ओम शांति। हम सभी चाहते हैं, हम सभी की इच्छा होती है कि मुरली हमें हमेशा क्या हो, याद रहे। लेकिन और सब बातें तो याद रहती है, लेकिन मुरली, इतनी बड़ी मुरली से कोई दो तीन पॉइंट याद रहता है? तो क्या कारण है, क्या कारण है कि हमें मुरली याद नहीं रहती है? तो ये भी हमें समझना है। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि जब हम मुरली सुनते हैं तो कैसे सुने, कैसे मुरली सुने जो मुरली हमें याद रहे। तो बाबा ने बताया था कि जब हम मुरली सुनते हैं तो उसी के साथ ही साथ क्या करें, साथ ही साथ रियलाइज या अनुभव करते जाएं, उसको फील करते जाएं उसको। तो जैसे कहते हैं ना, कोई आजकल भी आप देखते हैं कि कोई भी चीज रखते हैं, कहीं छोटी सी चीज भी, पेन, चश्मा या मोबाइल, कुछ भी रखते हैं, तो कई बार हम भूल जाते हैं हमने कहाँ रखा, फिर ढूंढते रहते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं, आजकल क्यों भूल जाते हैं? बहुत चीजें भूलते हैं आजकल। तो कहते हैं कि कोई भी चीज को, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं और मोबाइल ऐसे टेबल पर रख देता हूं, पेन यहां रख देता हूं, चश्मा यहां रख देता हूं, उसको देख नहीं रहा हूं, तो क्या होगा कि बहुत सारा चांसेस है कि हम भूल जाएंगे, ये भी याद नहीं आएगा हमने कहां रखा था। इसीलिए जब कोई छोटे बच्चे भी कोई काम करते हैं तो क्या कहते हैं, ध्यान से करना है ना, कोई ग्लास की चीज हो, शीशा हो, तो क्या कहेंगे, ध्यान से ले जाना, टूटे नहीं है ना उसको। तो ध्यान अर्थात देखना, देख कर, है ना। तो इसी प्रकार जब हम मुरली सुनते हैं तो जो मुरली सुनते हैं उसे भी क्या करें, हम देखें, हमारे सामने दिखाई दे, उसको उसी समय फील करते जाएं, उसी समय अनुभव करते जाएं, तो वो मुरली हमें भूलेगी नहीं, है ना। जैसे मान लो किसी को बहुत सारी चीजें दिखाई जाए, ये देखो ये देखो ये सब चीजें, है ना, बताया जाए, नाम लिया जाए, जैसे मान लो समोसा का नाम ले, समोसा है, ये केला है, ये सेब है, ऐसे खाने पीने की चीजें, कई चीजें दिखाएं, तो एक तरफ कहें कोई ऐसी चीज है जिसकी कोई मीनिंग नहीं है वो सुनाएं, और पूछें तो सब याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर दिखाएं और यदि व्यक्ति खा भी ले तब तो और भी नहीं भूलेगा, है ना। उसे पूछें क्या क्या खाया आपने, तो सब बता देंगे ना, क्यों, क्योंकि अनुभव किया, उसको देखा। तो इसीलिए हमें आदत डालनी है कि ऐसे भी छोटी छोटी चीजें भी हम अगर रखते हैं कहीं तो उसको देखते हुए रखें, ये नहीं किया तो मालूम ही है टेबल नहीं, उसको देखते हुए रखें तो चीजें भी नहीं भूलेंगे। तो इसी प्रकार जब हम मुरली सुनते हैं तो उसे हम देखें, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा है ना कि नंबर वन ड्रिल क्या है, मन मना भाव प्लस अशरीरी भाव, है ना, मन मना भाव और अशरीरी भाव, है ना। तो इसी का एक्सप्लेन करते हुए बाबा ने बताया कि जैसे आप मान लो श्री कृष्ण को याद करते हैं तो कहाँ याद करेंगे, कहाँ याद करेंगे, हाँ, श्री कृष्णपुरी या सतयुग में। तो जब उनको याद करेंगे तो वो दिखना चाहिए, जो ही कहा सतयुग ना, तो सतयुग हमारे आंखों के सामने दिखाई दे, फिर वो याद रहेगी मुरली। आपने सतयुग देखा, श्री कृष्ण को भी वहां देखा, है ना। जैसे कहा मन मनाभाव या अशरीरी, है ना, किडी, तो जो ही कहा मन मनाभाव तो क्या करेंगे, मन मनाभाव कहां, परम धाम, तुरंत उसी के साथ दिखाई दे परम धाम। आपने मुरली सुना और परम धाम फील किया, परम धाम में आपने बाबा को देखा, बाबा को देख रहे हैं, और बाबा जैसा ही स्वरूप हो हमारा, बाबा भी बिंदु हम भी बिंदु बन गए, तो ये मन मनाभाव हो गया, ये अशरीरी अवस्था हो गया। इसीलिए बाबा ने कहा किसमें क्या है। जैसे इसका एक एग्जांपल बताते हैं कि ड्रिल क्यों कहा बाबा ने, क्यों ड्रिल कराते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल आपको बताएं, जैसे मान लीजिए जैसे ये हाथ है ना, हमने ऐसे किया हाथ, और इस हाथ को अगर ऐसे ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस हाथ को ऐसे ही अगर हम कोई चीज से बांध के रख दें कितना दिन, 15 दिन, तो क्या होगा मालूम है? 15 दिन के बाद आप हाथ को फिर मोड़ेंगे ना, तो मुड़ेगा नहीं, मालूम है? जैसे प्लास्टर आदि लगाते हैं ना, तो मुड़ेगा ही नहीं। फिर क्या करना पड़ता है, फिजियो के पास जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो करो, फिर धीरे धीरे मुड़ता है। तो ये हाथ भी है, अगर इसमें मूवमेंट नहीं है तो ये भी क्या हो जाता है? तो इसी प्रकार यदि कोई मनन चिंतन नहीं करता है ना, विचार सागर मंथन नहीं करता है, तो उसकी बुद्धि भी जैसे क्या हो, जाम हो जाती है। फालतू बातें कहेंगे ना तो बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अगर मुरली के बारे में है तो इसीलिए बाबा ने कहा ड्रिल, नंबर वन ड्रिल है मन मनाभाव और अशरीरी। तो इसमें क्या होता है कि इसका भी बाबा ने बताया कई बार कि ये बड़ी बात नहीं है कि आप बीज रूप अवस्था में स्थित हो गए, ज्वालामुखी याद में स्थित हो गए, वो तो हो जाएंगे क्योंकि हम तैयारी करते हैं कि अभी हमें बैठना है बीज रूप अवस्था में, साइलेंस होते हैं, तैयारी करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्या टास्क दिया है कि एक सेकेंड में जिस भी स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सको, है ना। अभी कहा मन मनाभाव, तो एक सेकेंड में परम धाम में, है ना। अशरीरी अवस्था भी, यानी शरीर है, शरीर से अलग भी हो गई मैं आत्मा, शरीर से अलग होकर देख रहे हो शरीर को, तो आप देखेंगे जो ही शरीर से हम अलग होते हैं क्या हो जाता है, जिसको बाबा ने कहा सन्नाटा, है ना। बाबा ने कहा नहीं, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो कैसा हो जाता है वातावरण, तो आत्मा में कितनी ताकत है ना। देखिए आत्मा है तो कैसा भी शरीर है, इसमें क्या क्या पदार्थ हैं, सबको चला रही है आत्मा, और आत्मा निकली और शरीर कितना भी इंस्ट्रूमेंट हो, कितना भी लोग संभाल के रखना चाहे, फिर ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ये आत्मा की ही ताकत है जो इस शरीर को भी चला रही है, और आत्मा जो ही इस शरीर से परे हुई, शरीर से अलग हुई, तो शरीर के संबंधी, शरीर से संबंधित जो भी बातें, वो सबसे हम अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे आप मान लो लौकिक में आप जहां से भी आए लौकिक में हैं, तो वहां अगर हैं और आपको कहें कि मधुबन को आप फील करो, तो बुद्धि से फील करेंगे, लेकिन स्थूल में आपको वहां की चीजें भी तो दिखाई देंगी, और यहां हैं तो वहां क्या, और दिख तो नहीं रहा ना, आप अनुमान लगा सकते हैं केवल, है ना। तो जहां हम स्थित होते हैं वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाता है। तो इसीलिए जब हम जो ही शरीर से परे होते हैं, इस अलग होते हैं, तो स्वतः सन्नाटा हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहला लेसन ही यही है कि पक्का करें क्या, मैं आत्मा हूं। तो इसको जितना पक्का करते हैं इतना ही मन मनाभाव स्थिति हमारी होती जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बाबा का डायरेक्शन ही है क्या, इसी ड्रिल को करने का। तो अपने को प्रैक्टिस करना है जब भी समय मिले कि एक सेकंड में हम फील करें परमधाम चले गए, परमधाम को हम फील कर रहे हैं, एक सेकंड में सूक्ष्मतन में, सूक्ष्मतन को भी फील करें, फिर इस दुनिया में आते हैं साकारी दुनिया में, तो यहां भी जो हमारा ये शरीर है इसको भी लाइट का देखें। इसीलिए बाबा ने कहा एक मुरली में कि अगर आदत से मजबूर हो नहीं चाहते हो फिर भी देह दिख जाती है, तो बाबा ने कहा भले देखो लेकिन किसका देखो, लाइट का। जितना जितना लाइट का देखते जाएंगे उतना क्या होगा, हमारी स्थिति भी लाइट होती जाएगी और फिर कहीं अटकेंगे नहीं। इसी प्रकार आज बाबा ने कहा कि हमारी स्थिति एक रस रहे, खुशी हमारी मेंटेन रहे, उसके लिए क्या करें, उसके लिए बाबा ने क्या बताया कि विघ्न, जो भी विघ्न आते हैं उनका क्या नहीं करना है, परवाह नहीं करनी है। परवाह नहीं करनी अर्थात दो बातें हैं, एक कहते हैं केयरलेस, परवाह नहीं करना है, कई ये भी कहते हैं ना केयरलेस। तो यहां केयरलेस ये मीनिंग नहीं है, यहां परवाह नहीं करना अर्थात केयरलेस नहीं, केयर फ्री, संभाल करना है। कोई भी आपने कार्य किया और आपने ध्यान से किया, ध्यान से कर रहे हैं उसको, तो ये तो करना है, ये भावना होनी चाहिए कि हम एकदम ध्यान से करें उसको, लेकिन इसमें क्या नहीं करना हमको, अभी कार्य हो गया तो बार बार उसको सोचते ना रहें, बार बार जब करना है उस समय पूरा ध्यान से, लेकिन जब हो गया बुद्धि उसे उपराओ, उसकी परवाह नहीं करनी है। इसीलिए बाबा ने कहा विघ्न आएंगे, कलंक भी लगेंगे, है ना। अब देखो दुनिया में कोई दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और सबको तंग करने का, और हर तरह से जैसे दबंग होते हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता है समाज में भी, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन बाबा के बच्चे किसी का कुछ बिगाड़ते भी नहीं है, अगर मुरली सुनने भी जा रहे हैं, कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, दस पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, उनको नहीं पूछेंगे जिनसे पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं होती है ना उनको, उनसे नहीं पूछने की हिम्मत। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि विघ्नों की परवाह नहीं करना है। क्यों? और मान लो कोई आपकी निंदा भी करता है, कलंक भी लगाता है, तो भी इसकी परवाह नहीं करनी है। क्यों क्यों बताइए? क्योंकि बाबा ने आज कहा ना कि जितना कलंक लगेगा ना उतना ही क्या होगा, कलंकी दर बनेंगे, तो इसकी खुशी होगी ना, फिर ये दिखाई देगा कि हम सतयुग में क्या बनने वाले हैं, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हम किसके लिए भाग रहे हैं। दुनिया वालों का तो नहीं मालूम ना, वो तो यही केवल देख रहे हैं ये यहां जा रहे हैं, लेकिन अगर हम तो देख रहे हैं ना हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें तो ये बनना है ना, हमें ताज दिखाई दे रहा है अपना, हमें अपनी राजाई दिख रही है। तो इस स्मृति में रहेंगे तो खुशी हमारी मेंटेन रहेगी, स्थिति एक रस रहेगी। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी होता है, कई बार दुनिया में क्या कहते हैं लोग, निर्लज्जम और क्या कहते हैं, सदा सुखम, है ना, निर्लज्जम सदा सुखम, अर्थात जिसको लाज शर्म ही कुछ नहीं है ना, कुछ भी करो वो खुशी रहते हैं, ये भी अवस्था नहीं है। स्थिति का हमें ध्यान रखना है, हमारा पूरा ध्यान स्थिति पर हो, तो इस बात का हम ध्यान रखें, कभी भी विघ्नों से, किसी के कलंक लगाने से, किसी के निंदा करने से हम हतोत्साहित न हो जाएं, हमें याद दिखाई, याद रहे जो सतयुग में हमें प्राप्त होना है, सतयुग का वो दृश्य, वो सीन, वो अवस्था। तो जितना हम इस स्मृति में रहेंगे हमारी खुशी मेंटेन रहेगी, है ना। दूसरी बात बाबा ने बताया कि जो एक तो भारत के बारे में ही, कि भारत क्या है, किसका जन्म स्थान है, स्वयं भगवान का, है ना। जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये भगवान की जन्मभूमि है, भगवान यहां आते हैं, तो दुनिया में हर एक का हर एक की नज़र भारत के ऊपर आएगी। भारत इतना महान है ना, जहाँ भगवान का जन्म होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी बात को बाबा ने और क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि ये भूमि को हम नमन करते हैं, केवल इस भूमि को हम समझे कि यही भारत है। नहीं, बाबा ने कहा ये भूमि तो क्या है, तत्व है, और तत्वों की अगर हम आराधना करते हैं, तत्वों को अगर इतना हम उसके लिए भावना रखते हैं, तो बाबा ने कहा ये भूत पूजा हो गई। इसीलिए बाबा ने कहा कि भारत माता कहते हैं ना, तो भारत माता वास्तव में इस धरती को नहीं कहते हैं, इस भूमि को नहीं कहते हैं, ये तो तत्व है। वास्तव में आप माताएं भारत माता हो, है ना। तो भारत माताएं अर्थात जहां भी माताएं हैं, चाहे दुनिया में किसी भी स्थान पर, लेकिन इस सेवा में लगी हुई हैं, ये सेवा कर रही हैं, तो जैसे वो भारत माता का कर्तव्य कर रही हैं, निर्वहन कर रही हैं, है ना। तो इस प्रकार बाबा ने, और बाबा ने ये भी कहा कि हमें वर्षा भी देखना है ना, वर्षा जैसे लौकिक दुनिया में वर्षा कैसा मिलता है, हद का वर्षा, यहाँ कैसा मिलता है, बेहद का वर्षा। तो ये अगर हम बेहद का वर्षा भी देखते हैं ना, बेहद का वर्षा अर्थात केवल सतयुग नहीं, लेकिन जो हमारी यहां स्थिति है, सबसे बड़ा भाग्य हमारा क्या है, पूरे कल्प में जो हम भगवान के साथ हैं, बाबा की याद में हैं, बाबा की पालना में पल रहे हैं। सतयुग भी होगा, इसीलिए कहते हैं ना बाबा कई बार कि सतयुग में हमारे माँ बाप भी कौन होंगे, देवी देवताएं होंगे, भगवान तो नहीं होंगे ना। यहां हमारे माँ बाप कौन है, तो इसलिए इस समय को हमें देखना है, ये समय साधारण समय नहीं है, स्वयं भगवान हमारे माँ बाप हैं इस समय, ये अवस्था, ये स्थिति, इसमें अगर हम एंजॉय करते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा ने आज इसी से ही कनेक्टेड वरदान में कहा कि बहुत लोग चाहते हैं कि क्या चाहते हैं कि निरंतर बाबा याद रहे, निरंतर हम बाबा की स्मृति में रहें। तो बाबा ने उसकी विधि क्या बताई ब्लेसिंग में ही, वरदान में ही, कि जब मेरा मेरा समझते हैं ना, जैसे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे और हम कहते हैं मेरे बाबा, तो जितना हम मेरा समझते हैं तो मेरी चीज भूलती नहीं है, मेरी चीज हमेशा याद रहती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मेरा बाबा, आप जो ही आपने समझा मेरा बाबा, मेरापन, ये जो मेरापन बढ़ाते हैं तो इससे हमारी स्मृति निरंतर होती जाती है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर श्रेष्ठ स्मृति है तो सर्व सामर्थ्यां स्वतः आ जाती है, याद है हमारे साथ कौन है। और बाबा ने क्या कहा इसमें कि हार्ड वर्क है ना, मेहनत तो हर एक करता है, हार्ड वर्क, कोई ना कोई मेहनत तो करते ही है ना, लेकिन बाबा ने कहा मेहनत के साथ साथ क्या करो, स्थिति में भी हार्ड बनो, स्थिति में हार्ड बनो अर्थात तो ऐसा नहीं है कि स्थिति में हार्ड बनो अर्थात हम जोर से बोले, जोश में बोले, नहीं, यहां जितनी स्थिति आपकी हार्ड है, मजबूत है, उतना ही आपका व्यवहार क्या होगा, सरल होगा, उतना आप नम्रचित होंगे, आपका कोई अपमान भी करेगा तो भी आप, ये स्थिति हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम कर्म पे तो ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं खूब, लेकिन बाबा ने कहा स्थिति भी हमारी वैसी ही रहे जैसे हमें कर्म में हम जैसे मजबूत बनते हैं। तो इसीलिए ये जो ड्रिल है, ड्रिल के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान हो। और जैसे परमधाम में भी आप जाते हैं, मान लीजिए मनमनाभाव स्थिति में, तो उसमें भी कैसे रहें, उसमें भी लंबे समय तक नहीं रह पाते परमधाम में भी, बाबा की याद में भी। कारण क्या? तो बाबा ने एक मुरली में बताया था कि जब आप एक बिंदु देखते हैं ना परमधाम में, जैसे आप बैठ गए और परमधाम में बाबा को देख रहे हैं, एक बिंदु दिख रहा है आपको, तो बाबा ने कहा कि जब आप एक बिंदु देखते हो इसीलिए आपका क्या हो जाता है, योग टूट जाता है, लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो बाबा ने कहा आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो क्या करो, दो बिंदु देखो। परमधाम में कितने? दो बिंदु, एक बाबा और दूसरा कौन? दूसरा मैं। फिर आप देखो दोनों बिंदु आपस में जुड़े हुए, मैं और बाबा। तो जितना आप समय चाहें इसमें स्थित रह सकते हैं। तो परमधाम में मन मनाभव में दो बिंदु हो, जब आकारी या सूक्ष्म वतन में आते हैं फिर बाबा के साथ रूरियान करें, बाबा से बातें करें। जैसे आज बाबा ने कहा कि स्थूल में बाबा ने बताया कि जैसे हर एक चाहता है कि हम बाबा से बातें करें, लेकिन बाबा से बातें कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बाबा से बातें? जब सम्मुख होंगे, जब हम पहचानेंगे, है ना, जब हम जो ब्रह्मा बाबा का है ना आकारी आकार है उसके मध्य हम जब बाबा को देखेंगे, शिव बाबा को, है ना, फिर हम रूढ़ियान करते हैं बाबा से, फिर हम बातें करते हैं। तो परमधाम में मन मनाभव, ये रूढ़ियान हम करेंगे सूक्ष्म वतन में, और अशरीरी अवस्था का अनुभव हम यही करेंगे। हम इसका भी कई प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, जैसे अशरीरी है इसका भी ड्रिल अगर जैसे करते हैं तो एक है कि जैसे हम बिंदु इस शरीर के थोड़ा सा ऊपर स्थित हो गए और अपने को अलग देख रहे हैं, फिर देखिए आप कैसा फील होता है। दूसरा है कि आप शरीर के जैसे वृक्ष के मध्य आए और यही स्थित हो गए कि मैं वृक्ष के मध्य हूं, और यहां से अपने एक एक अंग को देख रहे हैं, जैसे लाइट का ब्रेन है, लाइट का एक एक अंग है, एक एक अंग को अंदर से आप देख रहे हैं, सब लाइट के हैं। तो जैसे आपके एक एक अंग हील होते जाएंगे, तो डील से ये फायदा है, जितना आप डील करेंगे, जितना मूवमेंट है इस बुद्धि की उतनी आपकी बुद्धि शार्प होती जाएगी, जितना आप बाबा से रूझान करेंगे, जितना बाबा से बातें करेंगे इतना आपकी बातों में भी बल आ जाएगा। तो अब किसी के ऊपर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं भगवान से बातें करते हैं ना, तो कितना आपके बातों में बल होगा। तो इसलिए आपको मुरली, अगर पूरी मुरली नहीं भी याद रहती है तो भी कम से कम एक पॉइंट दो पॉइंट निकाल करके जो आपको अच्छी लगती है उस पॉइंट पर पूरे दिन उस दो पॉइंट पर ही आप चिंतन करते रहिए, आपको फिर वो लगेगा ये मेरा है, वो आपका खजाना हो गया वो। तो कोई एक या दो पॉइंट, जरूरी नहीं कि कोई बहुत टफ सब्जेक्ट ले, जो आपको सबसे इजी लगता है उसी को आप पकड़िए, इजी पॉइंट को, और उसी पर दिन भर मनन चिंतन करते रहिए। और इसीलिए बार बार अगर मुरली पढ़ते हैं बैठ के बाद में, तो पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ, यहाँ तो इतना टाइम नहीं होता है, जैसे आप दो लाइन पढ़ा आपने, तीन लाइन पढ़ा, तो उसको एक बार एक मिनट बैठ कर उसको फील कर लिया, उसको अनुभव किया आपने, फिर धीरे धीरे ऐसा करेंगे फिर आपको मुरली में बहुत रस आने लगेगा। कई बार क्या होता है योग नहीं भी लगता है, लेकिन अगर आप मुरली पढ़ते रहते हैं ना, मुरली तो पढ़ सकते हैं ना, मान लो बुद्धि आपकी इतनी शार्प नहीं है, योग नहीं लग पा रहा, तो मुरली भी अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या लगेगा कि मेरा योग लगा हुआ है, और लग जाएगा, क्योंकि आपकी दुनिया आपका जहान वही हो जाएगा ना। तो इसीलिए कोई कुछ भी नहीं करता है तो मुरली पर बहुत ध्यान देना है। ओम शांति।